बेहद का सुख हम ब्राह्मण बच्चों ने पाया है। बेहद के सुख की परिभाषा हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। भक्ति मार्ग में सभी भगवान को याद करते करते, अनेक प्रकार की भक्ति करते करते थक गए। भगवान को ढूंढते ढूंढते बहुत सारी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा, बहुत सारी ठोकरें खाई, कितने तीर्थ यात्राएं की, लेकिन फिर भी हरदम दूर रहे और अभी भी संसार में भगवान को ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन हम बच्चों का अति परम सौभाग्य है कि वर्तमान संसार की परिस्थितियों को देखते हुए हम सही भगवान की नज़रों में समाये हुए हैं। जिसको पूरा संसार ढूंढ रहा है, एक सेकंड के दर्शन करने के लिए प्यासा है, तरस रहा है, और हम सभी उसके नयनों में समाये हुए हैं, उसकी नज़रों से निहाल हो रहे हैं, उसके महावाक्य से हम आत्मों का श्रृंगार हो रहा है, कितना हम सबका परम सौभाग्य है। तो ये ब्राह्मण जीवन बहुत कीमती जीवन है, अमूल्य है। अगर हम इतना भी याद रखें कि जो हमको समय मिला है, सारे कल्प में दोबारा नहीं मिलेगा, ये फिर कल्प के बाद ही मिलेगा, और वो भी बाद में भी वैसा पुरुषार्थ करेंगे जैसा हमने अभी किया होगा, क्योंकि इस समय हम सबको बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, समझ देते हैं, कितनी हमारी विशाल बुद्धि बना दी। आज की मुरली में बाप बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं, ये वरदानी समय चल रहा है, वरदानों के भंडार खुले हैं। तो सचमुच हम अपने जीवन को वरदानों से संपन्न कर रहे हैं। जैसे कल बाबा ने कहा कि तुम्हारी कर्मेंद्रियों से वरदान का अनुभव करते हैं, दादियों के साथ मुलाकात। भक्ति मार्ग में भी हर कर्मेंद्रियों का गायन होता है, नयन कमल, मुख कमल, चरण कमल, हस्त कमल, तो वो वास्तव में इसी समय का गायन है कि इसी समय भगवान ने हम सबको इतनी ताकत दी कि हमने स्वयं की कर्मेंद्रियों पर अनुशासन करना सीख लिया, राज्य करना सीख लिया। दूसरों पर राज्य करना आसान होता है, लेकिन स्वयं पर राज्य करना थोड़ा टेढ़ी खीर है, मुश्किल काम होता है। तो बाबा ने हम सबको वरदान दिए स्वराज्य अधिकारी का, स्वयं पर राज्य करने की ताकत दी, क्योंकि मन को नियंत्रण में रखना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तीन दिन पहले स्लोगन था ना, अगर योग की अनुभूति करनी है तो मन को नियंत्रण में रखो, मन को कंट्रोल करो। हाँ, दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। तो ये एक बहुत गहरा सब्जेक्ट है। हम सबका, ब्राह्मणों का लक्ष्य तो यही रहता है, क्योंकि सेवाएं तो अपने आप होती रहती हैं, सेवाएं सब स्थूल हैं, सर्व के सहयोग से संगठित होकर एक दो के विचारों का लेन देन करते सेवाओं में सफलता तो मिल जाती है। लेकिन मुख्य जो काम होता है, जो भारी काम है, मेहनत वाला काम है, योग वाला, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, उसका सर्टिफिकेट हमें कोई दूसरा नहीं देगा, वो हमें स्वयं को देना पड़ेगा। भले बार अचानक साइलेंस में बैठे होंगे, हमें एकांत में बैठे होंगे, तो कोई ऐसा पॉइंट बाबा टचिंग करा देंगे कि जिससे हमारी अवस्था सेकंड में एकदम उड़ने जैसी हो जाएगी। तो निरंतर सतत जागरूकता चाहिए इस ज्ञान मार्ग में। ज्ञान के अनेक बिंदु हमको योग की पराकाष्ठा प्राप्त कराने का साधन है। तो 14 तारीख की मूल्य थी, बहुत गहरी मूल्य, उसमें मुख्य 12 पैराग्राफ थे, और उस 12 पैराग्राफ में बहुत सारी बातें हैं, ढेर सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 12 बातें देखेंगे, कैसे उनको अपने जीवन में लाएं, और वो अगर हमारे जीवन में कमी है तो उनको लाने के लिए हमको कौन सा पुरुषार्थ करना है, क्या करना है, कौन सा अटेंशन देना है, कैसे हम उन पर काम करें। तो पहले आप सुनिए उस मूल्य में क्या क्या था। 14 तारीख की मूल्य बहुत गहरी मूल्य थी, क्योंकि बाबा के महावाक्य बहुत ऊंचे हैं, प्योर हैं एकदम। और उस बुद्धि रूपी पात्र में बिठाना, इसके लिए स्वच्छता चाहिए, बहुत बहुत स्वच्छता चाहिए, नहीं तो आगे दौड़ पीछे छोड़। सुनते जा रहे हैं लेकिन समा नहीं रहे हैं। समाना बड़ा जरूरी है। डेली की मुरली पढ़ते हैं भले, लेकिन कोई एक ऐसी मुरलियाँ होती हैं जिनको हमको घोट घोट के पीना पड़ता है ताकि वो हमारी नसों में समा जाए। बाबा ने कहा ना उसी दिन, तुम्हारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। कितना सुंदर सेंटेंस है। तो 14 बातें थी उस मूल्य में। सबसे पहले थी अंतर्मुखता। तुम सोच रहे थे अंतर्मुखता के बारे में, बाबा ने तो उस मूल्य में जो कहा कि अंतर्मुखता में बहुत कल्याण समाया हुआ है। तो कैसे कल्याण समाया हुआ है, कैसे कल्याण है अंतर्मुखता में? क्योंकि अनेक जन्म या इस जन्म में भी हम सब ने बाह्य मुक्ता का तो अनुभव किया ही है, और बाह्य मुक्ता से कितने नुकसान हुए हैं, कितने हमारे जीवन की शक्तियां नष्ट हो गई, हम गिरती कला में चले गए, ईश्वरीय अनुभवों से दूर होते गए। ब्राह्मण जीवन में भी अगर हम बाह्य मुक्ता में रहते हैं तो ईश्वरीय अनुभवों से हम बहुत दूर हो चले जाते हैं, वंचित हो जाते हैं उससे। तो अंतर्मुखता अवस्था क्या चीज है? जैसे कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखता अर्थात हम अपने आप को ही देखते रहें, हम अपने अंदर की गुफा में प्रवेश करके देखें कि मैं अंदर में कहां पर बैठा हूं, मैं अपने अंदर में हूं या बाहर ही कहीं हूं। क्योंकि जो भी हमारा संकल्प चलता है, हर संकल्प के साथ आत्मा की शक्तियां जुड़ी हुई हैं। भले हम यहां बैठे हैं, लेकिन यहां बैठे बैठे ही अगर बाहर का हम सोच रहे हैं तो हमारी सारी शक्तियां वहां लगी हुई है। यहां तो केवल शरीर मात्र से बैठे हैं, अर्थात हम अपने गुफा अंतर गुफा से बाहर निकल गए। तो हमें देखना है कि मैं अपने आप में कितना जी रहा हूं, अपने अंदर को टटोलना है, अपने अंतरात्मा को, कि मैं अंदर में सचमुच बैठा हूं या कहीं और ही घूम रहा हूं। कार्य सारा मुझे यहां पर बैठकर करने के लिए ईश्वरीय निर्देश मिले हुए हैं, और मैं अपनी कुर्सी को छोड़कर दूसरों की कुर्सियों को देख रहा हूं, दूसरों के राज्यों में घूम रहा हूं। अपने राज्य में क्या क्या चला उसका कोई खबर ही नहीं है। अपने राज्य में अंदर माया का प्रवेश हो चुका है, माया आक्रमण कर रही है सूक्ष्म स्थूल संकल्पों से, विकारी संकल्पों से, लेकिन मन तो कहीं बाहर ही घूम रहा है, माया का परछाया अंदर में पड़ा हुआ है। बाबा ने कहा ना अंतर्मुखी होकर महावाक्य नहीं सुनते हैं तो महावाक्य वो वाक्य बन जाते हैं और उन पर माया का परछाया पड़ जाता है। तो हम बाह्य मुक्ता से तो नहीं सुन रहे हैं कहीं, अंदर में मैं आत्मा कहाँ पर बैठी हुई हूँ और मैं आत्मा इसके अंदर क्यों बैठी हुई हूँ, इस अंतर गुफा में बैठकर मुझे क्या क्या अनुभूति करनी चाहिए। अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर करने के लिए परमात्मा की क्या क्या श्रीमत है, कौन कौन सी श्रीमत दी हुई है। अपने आप को झांकना है कि मैं आत्मा अंतर गुफा में बैठकर इन आँखों द्वारा देख रही हूँ या कहीं मेरी आंखें हो रही है। केवल इतना ही अभ्यास करना, मैं अंदर में बैठकर इन आंखों से के द्वारा देख रही हूँ, अंदर में बैठी हूँ, मैं कहाँ तक संपूर्ण पावन बनी हूँ, कहाँ तक मैंने स्वयं के अंदर ईश्वरीय शक्तियों को भरा हुआ है, कहाँ तक मुझ आत्मा में वो प्रकाश भरा है, मुझ आत्मा के वो पाप कर्म खत्म हुए हैं, मैं आत्मा बोझ से कहाँ मुक्त हुई हूँ। कहीं अंदर ही अंदर आत्मा अनेक प्रकार की जंजीरों से बंधित हुई नहीं है, अनेक प्रकार के जो बंधन है उन बंधन से आत्मा दुखी तो नहीं हो रही है, क्योंकि बंधन तो हमने खुद ही बांध के रखे हैं। और ये सारा सूक्ष्म पुरुषार्थ है। बाहरी तौर के बंधनों से छूटना बड़ा आसान काम है, लेकिन जो हमारे खुद के द्वारा क्रिएट किए गए बंधन हैं उनसे छूटने के लिए हमें स्वयं पर बड़ा सूक्ष्म नज़र, पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। बाहर मोटे तौर पर तो पुरुषार्थ करने से थोड़ी देर की अनुभूति हो सकती है, लेकिन हमारा जीवन निरंतर योगी है, सहज योगी, स्वतः योगी है। उसके लिए हमको कदम कदम पर स्वयं अपने ऊपर पूरी नज़र रखनी पड़ेगी, अपना पहरा देना पड़ेगा। तो पहरेदार हमेशा खड़े रहें, सजग रहें। तो सबसे पहले हमें स्वयं को देखना कि मैं अंतर्मुखी हूँ। दिन प्रतिदिन हमारी अंतर्मुखता बढ़ती जा रही है, यह संसार की तरफ आकर्षण है, उसका पैमाना है। अगर हमारी अंतर्मुखता नहीं है तो मन बुद्धि संसारिक विचारों में ही घूमती रहेगी, संसारिक आकर्षणों के बारे में सोचती रहेगी, सुख सुविधाओं के बारे में सोचती रहेगी। लेकिन सुख वास्तविक, जो गीत में सुना, वास्तविक सुख क्या है, वो संसारिक साधनों में नहीं है, वो साधना में। कौन सी? ज्ञान का चिंतन करने की साधना, अपने आप को अंदर सीट में बिठाए रखना, उसकी साधना। अपने आप को जो आत्मा है, अनेक प्रकार की जंजीरों से बंधी है, जो भावने का सूत की जंजीरें, बड़ी महीन बारीक जंजीरें, उन जंजीरों से बंधी है। क्या उन जंजीरों से मैं दिन प्रतिदिन मुक्त होता जा रहा हूँ, या स्वयं के देह की जंजीरें हैं, देह की स्मृतियाँ हैं, देह के संबंधों की स्मृतियाँ हैं, देह के पदार्थों की स्मृतियाँ हैं, देह की वस्तुओं की स्मृतियाँ हैं, वो सारी अंदर तो नहीं है। कोई खान पान की जा सकती है, उसी के लिए बार बार चिंतन कर रहे हैं। तो अंतर्मुखता में बैठकर हमें अपनी गहराई से जांच करनी है, अपना देखना है कि कुछ बदलाव हो रहा है मेरे में या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो क्या कारण है, क्यों पी भी हमारा बाहर की तरफ मन जा रहा है? तो पाएंगे कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है। ज्ञान को हमने अपने अंदर भी भरा नहीं है इतना, जो भावने का ज्ञानमय अवस्था। अंतर्मुखी रहने से ज्ञानमय अवस्था प्राप्त होगी, तो ये पहली बात थी उस मुरली में। और भी अगर हम चिंतन करें, बहुत गहरा चिंतन हो सकता है, हाँ जी हाँ, उससे कितने सारे गुण आएंगे, उससे धैर्य बताएंगे, अचल, अडोल, हाँ जी, स्थिर चित्त हो जाएगा, हाँ जी, निर्भयता, हाँ वो निर्भयता आ जाएगी, निर्भयता, निर्भय और निर्मोह, निर्लोभ, वो मन मंदिर की बात। तो और दूसरी बात है, बाबा ने कहा ये मन क्या है, एक मंदिर है, है ना, ये शरीर भी हमारा एक मंदिर है। तो जैसे मंदिर में कौन होता, किसको बिठाते हैं, मूर्तियों को बिठाते हैं, ना कि दैत्यों को। तो यहाँ संकल्पों की बात है। तो हमने अपने मन मंदिर में ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों को बिठाया है, या कि वो दैत्य वाले संकल्प हैं, वही भिकारी संकल्प, रावण के संकल्प, मायावी संकल्प, संसारिक समाचारों के संकल्प। सारे दिन में कौन कौन से संकल्पों से हम स्वयं को श्रृंगार रहे हैं, कौन कौन सी मूर्तियों को बिठाया हुआ है अंदर में, मंदिर में मूर्ति को कितना प्यार से सजाते हैं उसको, उसके प्रति हमारी कितनी श्रद्धा होती है। हमें स्वयं से प्यार करना सीखना है। जैसे मंदिर में मूर्ति के प्रति हमारा कितना प्यार होता है, माताएं तो कितनी सजाती हैं, तो हम अपने आप को कितना सजा रहे हैं अंदर से। मैं स्वयं की आत्मा को, स्वयं अपने आप को ईश्वरीय गुणों से कितना सजा रहा हूँ, कितना श्रृंगार कर रहा हूँ। बाबा ने कितनी सुंदर हमको इतना ऊंची नॉलेज दी, इतना बुद्धि का ताला हमारा खोल दिया, तो हम अपने आप से कितना देख रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, वो कितना सजा रहे हैं अपने आप को। मंदिर में किसी प्रकार की बदबू नहीं होती, खुशबू होती है। तो बाबा ने कहा पवित्र संकल्पों की खुशबू की अगरबत्ती हमको जलाते रहना हमेशा अंदर। और मंदिर में क्या होता है, उजियारा, प्रकाश होता है। तो हमारे अंदर में ज्ञान का प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, या ज्ञान का प्रकाश डिम तो नहीं हो रहा है? जीवन में अलवेलेपन आने का कारण एक ही है, और वो है ज्ञान की कमी। जैसे हम ज्ञान से थोड़ा विमुख हो जाते हैं, या ज्ञान के सब्जेक्ट को थोड़ा हम कम कर देते हैं, तो हमारे जीवन में अलवेलापन, आलस्य, निराशा, हताशा, नफरत, घृणा, ऐसे अनेक प्रकार के मायावी परिवार हमारे अंदर प्रवेश करता है। माया भी धीरे धीरे हमें अनेक प्रकार से बंधनों से बांधती है। फिर हमारी महसूसता शक्ति भी खत्म हो जाती है। जैसे कल बाबा ने कहा दिल की महसूसता, माफ़ी तो मांग लो, लेकिन दिल की अगर महसूसता नहीं, माफ़ी मंजूर नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को तो नहीं ठग रहे हैं। गलतियां होती हैं इंसान से, ऐसी बात नहीं है, होंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बार बार उन्हें गलतियों को दोहराते रहें। गलती हुई, माफी मांग ली सच्चे दिल से महसूस करके, लेकिन आगे के लिए हम उस पर थोड़ा खबरदारी रखें, सावधानी बरतें। तो यह है अपने मन मंदिर के अंदर ईश्वर गुणों की मूर्तियों को बिठाना है कि अनेक प्रकार के गुण, मुरली गुणों से भरी पड़ी है, कितने गुण हैं, है ना। तो ये दूसरी बात थी मन मंदिर। तो अपने जीवन में एक मंदिर है, मंदिर में कितना अच्छा भोग लगाते हैं। बाबा ने कहा तुम अपने आप को भी शुद्ध संकल्पों का भोग लगाओ। वो वाला भोग जो हम बाबा को लगाते हैं, अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ही पावरफुल हमारा भोग हमारे संकल्पों का भोग है, शुद्ध संकल्पों का भोग। शुद्ध संकल्पों का भोग अर्थात जो बाबा हमको इतने ऊंच पवित्र संकल्प दे रहे हैं, उन संकल्पों को हम अपने मन बुद्धि में कितना समा रहे हैं, क्योंकि उन संकल्पों की खुशबू, बाबा ने कहा इसी मुरली में लास्ट पैराग्राफ में, जो बच्चे सवेरे ज्ञान का मनन चिंतन करते आपस में बैठते हैं तो वहाँ वातावरण भी शांत हो जाता है और उस वातावरण में शुद्ध संकल्पों की खुशबू फैलती है। तो हमारे अंदर शुद्ध संकल्प कितने एकत्रित हो रहे हैं, कितना भंडारा वो भरपूर हो रहा है। तो दूसरी बात है, मन एक मंदिर है, शरीर भी एक मंदिर है, ना केवल मैं, सभी मंदिर है, मंदिर की मूर्तियां हैं, चेतन मूर्तियां हैं। तो कितनी ऊंची हमारी भावनाएं हो जाएंगी, भावनाएं तुरंत बदलती नहीं है, लंबे समय के अभ्यास के बाद, प्रैक्टिस के बाद, जब हमारे संकल्पों का धीरे धीरे परिवर्तन होता है, हमारी सोच बदलती है, उस सोच का प्रभाव हमारी कर्मेंद्रियों पर पड़ता है और उसके आधार पर हमारी दृष्टि चेंज होगी, हमारी वृत्ति चेंज होगी, हमारी वाणी चेंज होगी, हमारे संकल्प चेंज होंगे, हमारे चाल चलन चेंज होगी, व्यवहारिकता चेंज होगी। ये एक दो दिन का काम नहीं है, तो सूक्ष्म रूप से हमें अपने स्तर पर स्थूल रूप से, जैसे कल भी बताया ना क्लास में, कोई भी कार्य हम स्थूल से करते हैं तो वो सूक्ष्म में याद करना आसान हो जाता है, झूले की बात बताया था ना। तो हमें पहले अपने अपने शरीर पर काम करना है, क्योंकि शरीर, इन आंखों से पहले शरीर दिखाई देता है, तो पहले अपने शरीर को पवित्र बना देना है। क्योंकि मंदिर बाहर से अगर अशुद्ध है, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, इतना सारा चारों तरफ गंदगी पड़ी है, तो भले अंदर मूर्ति साहब भी, बाहर अंदर जाएगा कौन फिर उसके अंदर। तो शारीरिक स्वच्छता अपने, हमें शरीर के ऊपर योग करना है, शारीरिक स्तर पर, जैसे कल बताया कर्मेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों को वरदान नहीं बनाना है, कैसे बनाना है, तो क्या किसी ने चिंतन कल की मुरली में था, तो कैसे बनाना है कर्मेंद्रियों को वरदानी, कुछ तो चिंतन चलना चाहिए ना। तो आज सवेरे हम योग में सोच रहे थे कैसे करें, तो फिर सवेरे योग में थोड़े ही संकल्प चले, फिर शाम को योग में हमने सोचा तो कैसे कर्मेंद्रिय हमारी वरदानी बने, क्योंकि मुख्य तो हमारा कर्म करते हुए आत्मा तो दिखती नहीं है, पहले तो इतनी बड़ी बॉडी दिखेगी, चाहे वो बहन है चाहे भाई है, और संकल्प तो वही चलेंगे जो हमने फीड करके रखे हुए हैं। तो कैसे कर्मेंद्रिय को वरदानी बनाए, बिल्कुल हाँ। तो हर संकल्प में हम बाबा को यूज करें, है ना, जैसे महसूस करें कि बाबा मुझे शक्ति दे रहा है और वरदान दे रहा है कि तुम्हारे नयनों से निरंतर परमात्म शक्तियों की करंट, परमात्म शक्तियों की लाइट निकल रही है ना, और तुम्हारी आंखें निरंतर निहाल करने के योग्य बन रही हैं, तुम्हारे नयनों में परमात्म शक्तियां समाई हुई हैं, तुम्हारी वाणी में ज्ञान रत्न समाये हुए हैं, तुम्हारे मुख से आज से हमेशा के लिए ज्ञान रत्न निकलेंगे, जैसे भगवान वरदान दे रहे हैं हमको, तुम्हारे हाथों से आज से हमेशा श्रेष्ठ कर्म करेंगे, क्यों, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं, है ना, तुम्हारे कदमों में पद्म समाये हुए हैं, हर कदम में बाप की याद समाई रहेगी। तो ऐसे अपने कर्मेंद्रियों के प्रति जो वरदान, जो भावने का तुम्हारे देखने से चलने से दादियों को बोला, कैसे दादियों को देखने से हमारी दृष्टिवृत्ति चेंज हो जाती थी, कैसे, क्यों, लंबे समय की साधना करते करते उनके नस नस में शरीर ताकत समा गई है। ताने संकल्पों से हमारा शरीर प्रभावित होता है, हमारे खुद के संकल्प ही दुख सुख का कारण बनते हैं, दुख स्थूल नहीं है, दुख हमारे संकल्पों से क्रिएट होता है। हम अच्छे पावरफुल शक्तिशाली संकल्प करते हैं तो कैसे भी परिस्थिति हो वो परिस्थिति को भी पार कर लेते हैं, उसका प्रभाव नहीं पड़ता किसी के। कोई कोई देखा जो शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, जितनी मर्जी बड़ी परिस्थिति हो उनके ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं होता है। उनके संकल्प भी इतने शक्तिशाली हैं कि वो उनका उन संकल्पों का प्रभाव जो परिस्थिति के इसमें आता है तो परिस्थिति के इसमें बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा शरीर के ऊपर, क्योंकि ताकत है उनके, शक्ति पहले से भरी रखी है। तो दूसरी बात थी मन मंदिर, तो इसे डिटेल से तो बहुत लंबा चिंतन किया जा सकता है इसके ऊपर। तीसरी बात थी, कौन सी थी तीसरी बात? सर्विस, भावना का स्थूल और सूक्ष्म सर्विस। अगर तुम बच्चे किसी में कोई कमी देखते हो तो उसकी कमी को देखते हुए भी सूक्ष्म रूप से उसको उस कमी से मुक्त करने के लिए सूक्ष्म से योग की शक्ति का दान देना है, और उससे पहले हमें स्वयं को भी दान देना है। उसकी दूसरों की कमी कमजोरी का वर्णन नहीं करना है, वर्णन करना अर्थात हम वायुमंडल में उसका वातावरण निर्माण कर रहे हैं, और वो वातावरण निर्माण होने से और ही हम आत्माएं बोझिल हो जाएंगी और ही हमारे सिर पर पापों का बोझ चढ़ जाएगा। हाँ जी, हाँ, बंधन हो जाएगा और ही आत्मा बन जाएगी। पहले से बोझ बहुत है और गठरी हम ऊपर रख दें तो कितना बड़ा बोझ हो जाएगा। तो ये दूसरी बात, सूक्ष्म और स्थूल और सूक्ष्म सर्विस, तो सूक्ष्म सर्विस का महत्व है ना। तो ये तीसरी बात थी। चौथी बात थी स्वाहा होने की बात, है ना। बाबा ने कहा जैसे भक्ति में भी हमको याद है, हम तो इतनी भक्ति नहीं करते थे लेकिन माता पिता के भय से हम एक ही आरती किया करते थे, जय जगदीश हरे। तो उसमें कुछ एक लाइनें आती थी, वो हमको बचपन से कटती थी, तन मन धन सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। तो हम सोचते थे कि तन तो भगवान के लग नहीं रहा है, मन में नहीं, धन में नहीं, तो कैसे कह रहे हैं ये। अब पता पड़ा हो तो बाबा ने कहा जब से तुम बच्चे मेरे बने हो तब से तन मन धन सब स्वाहा, संबंध भी। उस दिन पिछले संडे को मुरली थी तन मन धन की, क्या बताया था उसमें भी तन मन धन के लिए और संबंध के लिए 12 बातें। अगर ये तन है तो क्या करना है इस तन से, कोई पहली बात कोई विकर्म नहीं हो, दूसरी बात इस तन से ये तन तंदुरुस्त रखना है, इस तन को भी तंदुरुस्त, और तीसरी बात ईश्वरी सेवा में लगाना है। ऐसे मन से क्या था, हाँ, मन निर्विकारी, वो संबंधों में थी निर्विकारिता। मन को क्या करना है, चिंतन करना है और शुद्ध करना है और पवित्र करना है, और मन को मन अभाव में रखना है ना, और मन में शुद्ध संकल्प करने हैं, है ना। ऐसे तीन बातें हैं, भूल गया हम भी। फिर ऐसे तन से भी है, धन से भी है, धन को ईश्वरी सेवा में लगाना है, किसी को दबाकर नहीं कमाया हुआ हो धन, और ऐसे तन धन जन निर्विकारिता हो जन में। तो मैंने बातों को रिकॉल कर, देखो भूल गई ना मेरी, कल तक याद थी आज भूल गई, बार बार रिकॉल करनी है, क्योंकि मन का स्वभाव को पहचानना बड़ा ठेढ़ी की रहा है, इसलिए इसको बड़े प्यार से समझाना है। तो तीसरी बात थी सर्विस का है, चौथी बात थी तन मन धन से स्वाहा। तो बाबा ने कहा जब से तुम बच्चे बाप के बने हो तब से तन मन धन से कितने स्वाहा, क्योंकि तन भी हमारा नहीं रहा अभी, तो इस तन से हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस तन के द्वारा क्या खा रहे हैं, मन के द्वारा क्या सोच रहे हैं, वो हमको अपने ऊपर अटेंशन रखना है। ये स्व भगवान का हो गया अभी सारा ये, तो जब भगवान की अमानत होगी तो अमानत में ख्यानत करना ये भी तो हमारे ऊपर बोझ चढ़ जाएगा ना। भगवान का दिया हुआ तन है, ये अमानत है, अब ये घर किराए का मिला हुआ है, अपना नहीं है, बहुत अमूल्य है, इसकी संभाल भी उसी तरह से करनी है। तो ये थी चौथी बात। पांचवी बात थी सच्चा प्रेम, ट्रू लव, वास्तविक सच्चा प्रेम क्या होता है। बाबा ने कितनी शुद्ध अच्छी सुंदर परिभाषा बताई कि वास्तविक प्रेम अगर हमारा आपसे प्रेम है या आपका हमारे से प्रेम है सच्चा प्रेम, तो हम एक दो की कमी को बताएंगे, सावधानी देंगे, इशारा देंगे, अर्थात अगर कोई हमको कमी का इशारा दे रहा है तो वास्तव में वो हमारी सच्ची परवरिश कर रहा है, वही सच्चा प्रेम है। जैसे जिसको जिसके साथ प्रेम होता है तो उसकी कमी कमजोरी देख नहीं जाती उससे, है जी। हाँ, फूल को सुरक्षित करने के लिए कांटों को निकालना पड़ता ना, जैसे अगर फूल की वैल्यू को बढ़ाना तो क्या होता है, कांटों को निकाल के। 18 जनवरी को हम देखते हैं ना, जैसे गुलाब के फूल होते हैं, तो जब तक वो बगीचे में है तब तक उसको कोई देखेगा, है ना। लेकिन वही फूल जब पूरे स्वच्छता के कारण स्वच्छ करके उनको लाते हैं, शांति स्तंभ पर रखते हैं, तो उन फूल का कितना महत्व हो जाता है। बाबा एक कमरे में रखते हैं तो कोई कोई माताएं आती हैं, फूल लेके उठा के जाती हैं, और वो जो 18 जनवरी को बनते हैं तो कोई को तो उनको लेके जाते हैं, उनका गुलकंद बनाते हैं, उनको खाते हैं, कितनी वैल्यू रहती है उन चीज़ की। तो बाबा ने कहा कि ये थी चौथी बात, स्वाहा की बात, है ना। पांचवी ही सच्चा प्रेम, और छठी बात है तुम हो चैतन्य फूल, है ना, खुशबूदार फूल, है ना। तो खुशबूदार फूलों का कितना महत्व होता है, खुशबूदार फूलों की तरफ स्वतः इंसान आकर्षित होता है। तो कौन से दिव्य गुणों की खुशबू हमारे अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है ना, हमारे कर्म इंद्रियों से वैसे क्रियाकलाप हो रहे हैं, अच्छे कर्म हो रहे हैं, सबको प्रेरित कर रहे हैं अच्छे कर्म करने के लिए, हमारे कर्म इंद्रियां, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, व्यवहार, बोल वगैरह, तो हम स्वयं को देखना ही। और छठी बात थी, ये छठी बात होगी, सातवीं बात थी क्या बात थी, है जी, नहीं ड्रामा नहीं है वो, ड्रामा वाली वैरायटी ड्रामा नौवीं बात है वो। सातवीं बात क्या थी, झूले में भी नहीं, झूले में कल झूले थे। सातवीं बात कौन सी है, चैतन्य फूले थे। उसके बाद है सातवीं बात है ज्ञानिष्ठ अवस्था से ध्यानिष्ठ अवस्था चाहिए। बाबा ने कहा पहले प्रेम को, प्रेम को पहले महत्व देते तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पहले ज्ञान को महत्व देना है। इस ब्राह्मण जीवन में जब हम आते हैं तो ज्ञान को अगर हमने पक्का नहीं किया, ब्राह्मण संसार में आने सब एक तो प्रिय लगेंगे, लेकिन प्रेम को अगर हमने पहले रखा तो बहुत सारे चांसेस गड़बड़ होने के हैं। इसलिए पहले ज्ञान की अवस्था को मजबूत करना है। ज्ञान की अवस्था मजबूत है तो फिर प्रेम भी हमारा सच्चा वास्तविक प्रेम होगा, निस्वार्थ प्रेम होगा, निश्चल पवित्र प्रेम होगा। तो ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञान, नहीं तो माया आने की पूरी संभावना है। तो ये तो सातवीं बात। आठवीं बात कौन सी थी, साक्षी अवस्था। बाबा ने कहा साक्षी अवस्था जो है बहुत अति मीठी रमणीक सुंदर अवस्था है ये, है ना। जैसे भगवान भी कैसे साक्षी होकर देख रहा है ऊपर कि नीचे कितने कोरोना से मारा मारी पड़ी संसार में, क्यों वो तो देख रहा मेरे पास ही आ रहे वाले सारे, उसको तो खुशी होगी यहाँ रोना चिल्लाना चल रहा है, लेकिन वास्तव में हम सब अपने स्वीट होम में जाएंगे, है ना। तो साक्षी होकर देख रहा वो, तो ऐसे ड्रामा की हर बात को हमको साक्षी होकर देखना। और बाबा ने कहा तुम्हें इस बेहद के संगठन में इस साक्षी अवस्था का बहुत अभ्यास करना है, क्योंकि बेहद के संगठन में बेहद की बातें आती हैं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बड़ा संकुचित रहता है। जब हम संकुचित दृष्टिकोण से जीते हैं तो मन में बहुत प्रकार की हलचल होती है, इसलिए हमने बड़े को देखा, बड़े बेहद की स्थिति में रहते हैं, छोटी छोटी बातों का अगर वो पकड़ के बैठ जाए तो फिर तो हो गया काम, बहुत विशाल विचारधारा होती है उनकी। हम देखते हैं, हम सोचते हैं कभी कभी ये बात ठीक नहीं है, लेकिन जो दूरगामी परिणाम देखते हैं वो उनकी विचारधारा बहुत दूरगामी विचारधारा होती है। तो इस संगठन में हमको साक्षी अवस्था का भी अभ्यास करना है, स्वयं को साक्षी होकर देखना है, है ना। जो बताया ना, अगर दिन में और में कोई माया आती है किसी प्रकार के ऐसे वे संकल्प, साक्षी छोड़ देना उनको, पकड़ के नहीं रखना, छोड़ दिया उनको। उसमें बाबा ने बाइस्कोप की भी बात की है ना, संसार का बाइस्कोप भी कैसे देखते हैं, हम साक्षी होते थे। तो ऐसे जिंदगी की रील चल रही है, इसको भी साक्षी होकर देखना है। तो ये थी आठवीं बात साक्षी। फिर नेक्स्ट नौवीं बात है वैरायटी ड्रामा। ये ड्रामा बड़ा विविधतापूर्ण है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, तो किसी के पार्ट को हमको देख के प्रभावित नहीं होना है, चाहे अच्छा है चाहे कैसा भी है, प्रभावित नहीं होना है। हमें सीखना है एक दो से, लेकिन प्रभावित नहीं होना है। रीस भी तो कर सकते हैं, अगर कोई अच्छा तो उसके बराबर बनने की रीस भी तो कर सकते हैं, चौका बन जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो रेस करनी है अपने को, तो पुरुषार्थ की रेस करनी है, अपने आप से भी रेस करनी है ना। तो ये थी वैरायटी ड्रामा। इस ड्रामा बड़ा कल्याणकारी, हर बात में कल्याण समाया हुआ है, ऐसे ड्रामा के बहुत सारे राज हैं। ये ड्रामा स्वयं भगवान को पसंद है, तो हमें भी पसंद होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट है दसवीं बात, ड्रामा के बाद क्या था, तो इसे पॉइंट लिखनी है तब तो याद रहेगी। वैरायटी ड्रामा, उसके बाद हाँ कौन सा किसका फाउंडेशन है, धैर्य अवस्था का फाउंडेशन है वेट एंड सी। अगर हमें अपनी अवस्था को धैर्यवत बनाना है तो वेट एंड सी, ये नहीं देखना क्या हो रहा है, क्या हो, क्या होगा, क्या होगा, क्या, वेट एंड सी। अपने आप जैसे कोई होता है, कोई ड्रामा देखते हैं, अब मान लो आप किसी ने पहले से ड्रामा देखा हो और वो हमारे साथ बैठा हुआ है और बीच में बोलता रहेगा ऐसे होगा ऐसे होगा, तो मज़ा नहीं आएगा उसके सुनाने से, इसको लगेगा छोड़ना हमको देखने दे, वेट एंड सी। तो ऐसे ये ड्रामा भी ऐसे चल रहा है अपने ड्रामा के लिए, वेट एंड सी। तो इसमें इससे क्या होगा, हमारी अवस्था धैर्यवत होती जाएगी। धैर्यता का सागर, बाबा कितना धैर्य धरा हुआ आज तक, धीरे धरे मनो, तो हम उसके बच्चे हैं ना। तो नौवीं बात थी, दसवीं बात हाँ धैर्यवत बनने का फाउंडेशन। और ग्यारहवीं बात है रिहर्सल। तो रिहर्सल किस चीज़ का करने, बाबा ने कहा आने वाली परिस्थितियों से तुम्हें घबराना नहीं है, उसके लिए रिहर्सल करनी है, मजबूत होना उसके लिए, कि अगर तुम उस समय घबरा गए तो फेल हो जाएंगे। तो पहले से रिहर्सल करनी है अपनी अवस्था को मजबूत बनाने के लिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए इसमें। और नेक्स्ट लास्ट बात में है ग्यारहवीं, बाबा ने कहा जो बच्चे ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होकर ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, मुरली का चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनकी उनसे जो वाइब्रेशन है वातावरण वो शांत हो जाता है। तो हमें देखना है कि हम जो भी हमको टाइम मिलता है तो हम क्या क्या चिंतन करें ताकि वातावरण को शांत, शक्तिशाली, शुद्ध, पवित्र बना के रखें, जिससे आने वाली आत्मा संबंध संपर्क में जो भी आए कुछ तो कुछ अनुभव करें, जो भी हमारे संकल्प संपर्क में आए कुछ तो हल्कापन अनुभव करें। नहीं तो कोई को होता है अगर किसी के संपर्क में जाते तो कोई डरते हैं जाने के साथ पास में, बोलने से डरते हैं, है ना। तो ये 12 बात थी। सबसे पहली बात थी अंतर्मुखता की गुफा, दूसरी बात है मानने का मंदिर है इसको, ये शरीर भी एक मंदिर है। तीसरी बात है सर्विस, सूक्ष्म और स्थूल सर्विस। और चौथी बात है, चौथी बात क्या थी, कांटे फूल तो बाद में, चौथी बात है स्वाहा, हम अपने तन मन धन से स्वाहा है। कोई भी है, चाहे यज्ञ में है या चाहे हम घर में रहते हैं, सभी बाबा के बच्चे स्वाहा हैं समर्पित। पांचवी बात है ट्रू लव, सच्चा प्रेम, वास्तविक प्रेम कौन सा है। छठी बात है हम हैं चैतन्य बगीचे के फूल, है ना, चैतन्य फूल हैं हम, भगवान के बगीचे के चैतन्य फूल हैं, तो हम क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सातवीं बात थी, क्या बात थी सातवीं, ज्ञानिष्ठ और फिर भूल गए बीबी, ज्ञान और ध्यान की बात है ना। हाँ तो ज्ञानिष्ठ अवस्था अच्छी है, ध्यानिष्ठ अवस्था थी। आठवीं बात थी साक्षी अवस्था, बड़ी मीठी सुंदर रमणीक अवस्था है, तुम्हारे चित्र रमणीक होने चाहिए, रमणीक चरित्र। तो ये थी आठवीं। नौवीं बात थी वैरायटी ड्रामा, ये ड्रामा कितना वफादार है, अगर कोई पार्ट रॉन्ग भी बजा रहा है तो वो भी एक्यूरेट है, क्योंकि ड्रामा में उसका वो कैसे दूसरा पार्ट बजा सकता है, दूसरा बजा ही नहीं सकता है ड्रामा में ऐसे। तो ये नौवीं बात थी। दसवीं बात थी, क्या बात थी दसवीं, वेट एंड सी, धैर्य अवस्था का फाउंडेशन मजबूत करने के लिए वेट एंड सी। और ग्यारहवीं बात रिहर्सल करनी है आने वाली परिस्थितियों में अपनी अवस्था को मजबूत बनाएं ताकि हम घबराएं नहीं, फेल नहीं हो, तो अपनी अवस्था को मजबूत बनाने के लिए रिहर्सल करनी है, और वो है इस बॉडी से डिटैच होने की रिहर्सल, सेकंड में उस बॉडी से डिटैच। और लास्ट में थी ज्ञान का मनन चिंतन, जो बच्चे करते हैं मूल्य का चिंतन करते हैं तो वो शांति के वातावरण का निर्माण करते हैं। तो हम क्या करें अपने आप को देखना है। तो ये 12 बातें हैं, ऐसे बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं, कितने सारे उसमें गुण भरे हुए हैं। तो ऐसे हम बाबा के बच्चे बाबा की आशाओं को पूर्ण करेंगे तो दिल में याद का झंडा लहराता रहेगा। ओम शांति।